ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञान्तिमरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्स्वे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तत्कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुवश्चा कृपा सिंधुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पादो यदीयो प्रथमो द्वितीयो तृतीयैतुरीयो कथितो यदौरु नाविस्तथा पञ्चमैव षष्ठो भुजान्तरं दोर्युगलं तथान्यो कंथस्तु राजन् नवमो यदीयो मुखारविन्दं दशमं प्रफुल्लं एकादशो यस्य ललाटपट्टं शिरोपितु द्वादशैव भाति तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतस्वरूपं भजाम्यहं भागवतस्वरूपं।
हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवतों के सप्तम स्कंद में प्रथम अध्याय तदनंतर 26वां श्लोक देखेंगे।
'तस्मात् बैरानुबंधेन निर्वेरेण भयेन वा स्नेहात् कामेन वा युञ्जात् कतञ्चित् नेक्षते पृथक्
शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। तस्मात् अतएव वैर अनुबंधेना निरंतर शत्रुता से निर्वैरेण भक्ति से भयेन भय से वा अथवा स्नेहात स्नेह से कामेन विषय वासनाओं से वा अथवा युंजात केंद्रित करें कथंचित किसी न किसी तरह न नहीं इच्छते देखते हैं पृथक अन्य कुछ। अतएव यदि कोई बद्ध जीव किसी भी तरह शत्रुता या भक्ति भय स्नेह या विषय वासना द्वारा इनमें से सभी या किसी एक के द्वारा अपने मन को भगवान पर एकाग्र करता है तो फल एक जैसा मिलता है, क्योंकि अपनी आनंदमयी स्थिति के कारण भगवान कभी भी शत्रुता या मित्रता द्वारा प्रभावित नहीं होते। कृपया मेरे पीछे पीछे दोहराइए। अतएव यदि कोई बद्ध जीव किसी भी तरह शत्रुता या भक्ति भय स्नेह या विषय वासना द्वारा इनमें से सभी या किसी एक के द्वारा अपने मन को भगवान पर एकाग्र करता है तो फल एक जैसा मिलता है, क्योंकि अपनी आनंदमय स्थिति के कारण भगवान कभी भी शत्रुता या मित्रता द्वारा प्रभावित नहीं होते। इसमें तात्पर्य करीब 3-3.5 पेजों का है, तो हम तात्पर्य धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे और उससे कुछ विश्लेषण करते जाएंगे। सर्वप्रथम यहां उपस्थित वैष्णव एवं वैष्णवियों सभी के चरणारविंद में मैं नमन करता हूं कि आप मुझे कृपालेश प्रदान करें। वैष्णव की कृपा के अलावा किसी बद्ध जीव के लिए कोई और नौका नहीं है, इसलिए आप सभी मेरे ऊपर कृपा करें। आप लोगों को अवगत ही है कि यह स्कंद ऊती कहलाता है, ऊती अर्थात कर्म वासना। कर्म वासना क्या है? अब इस पूरे स्कंद में बड़ी विलक्षणताएं आपको देखने को मिलेगी कि हिरण्यकश्यप महाअसुर है, असुर सम्राट है, असुर राज है, लेकिन उसका पुत्र श्री प्रहलाद बड़े ही उच्च कोटि के भगवत भक्त हुए, है ना। प्रहलाद प्रवरा, भक्तानाम प्रवरा, ऐसी उनको उपाधि दी जाती है कि जितने भी भक्त हुए उनमें काफी श्रेष्ठ भक्तों में उनकी गिनती होती है। भक्तों में सिरमौर है, शिरोमणि है। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो भक्त हैं जैसे बलि महाराज और उनके 100 पुत्र हुए थे, उनमें से एक वाणासुर भी है। आप अगर दसम स्कंद पढ़े और उसमें 62-63 अध्याय है, उसमें वाणासुर की जो पुत्री रहती है उषा, उनका विवाह होता है भगवान अनिरुद्ध से जो भगवान के पौत्र हैं, और वो वाणासुर अनिरुद्ध को बंदी बना लेते हैं और भगवान के साथ भी युद्ध करते हैं। तो ऐसी ऐसी विलक्षणताएं देखने को मिलती हैं शास्त्रों में। अब जैसे भगवान वराहदेव और भूमि देवी, इनसे एक पुत्र हुआ नरकासुर, नरक। अब वो है भगवान का पुत्र लेकिन वो है असुर। तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि जो सद्भक्त हैं उनके यहां पे कोई सद्भक्त ही जन्म लेगा या कोई असुर है तो वहां असुर ही जन्म लेगा। ये वैसे सामान्य नियम है कि ऐसा होता है, लेकिन विशेष नियम भी कभी कभी हो जाते हैं, अपवाद हो जाते हैं। तो ऐसा ही इस स्कंद में हमें उत्यह कर्म वासना, मतलब जैसी जिसकी कर्म वासना होगी वैसा उसको अपना अलग जन्म मिलेगा, ये भावना है। यहां पे ये जो पहला अध्याय है सप्तम स्कंद का, ये प्रारंभ भी कैसे होता है, सभी लोगों ने पहला श्लोक देखा होगा कि परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं। उन्होंने षष्ठम स्कंद में देखा कि बेचारे दैत्यों की तो खूब पिटाई हो रही है बार बार, और जो इंद्रादि देवता है वो हमेशा विजयी हो जाते हैं, और ज्यादातर ऐसा लगता है, देखने में ऐसा आता है कि इंद्र का यानी देवताओं का भगवान पक्ष ले रहे हैं और देवताओं को ताड़न कर रहे हैं। तो इससे ये प्रतीति होती है कि भगवान में शायद पक्षपात है, कि देवताओं का तो वो पक्ष लेते हैं और ये जो है असुर इनको ताड़न करते हैं, हमेशा ऐसे ही देखने में आता है। तो फिर इसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी बड़े बहुत सारे प्रमाण दे रहे हैं, क्योंकि ये सामान्य प्रश्न नहीं है। ये कई बार हमारे मन में भी ऐसा होता है कि हम भक्त समाज में रहते हैं और हम देखते हैं किसी भक्त को तो बड़ी उन्नति मिल रही है आर्थिक और भक्ति दोनों की दृष्टि से, और किसी को कम मिल रही है, तो क्या भगवान में विषमता है क्या कि एक व्यक्ति को तो एकदम सभी तरीके से उसको संपन्न बना रखा है भक्ति से और भौतिकता दोनों से ही, और एक मैं हूं कि मुझे कुछ प्राप्ति नहीं हो रहा है, ना तो इधर का ना इधर का, ऐसा लगता है हमें कई बार। तो ये केवल ऐसा नहीं कि असुरों और सुरों के बीच में या देवताओं और सुर के बीच में ये बात उठती है कि भगवान में विषमता है, हमारे बीच में भी हम देखते हैं। तो बात यह है भगवान में विषमता नहीं है, भगवान हमेशा समत्व है। आपने छठवें सातवें आठवें श्लोक में ये देखा होगा समत्व कैसे है, इसका एक छोटा सा उदाहरण लेके आसानी से समझ में आ जाएगा। भगवान जब सतोगुण की वृद्धि होती है तब देवताओं का पक्ष लेते हैं, और जब रजोगुण की वृद्धि होती है तो असुरों का पक्ष लेते हैं, और जब तमोगुण की वृद्धि होती है तो यक्ष राक्षसों का पक्ष लेते हैं। तो आप कोई प्रश्न कर सकता है कि भगवान जब देवताओं का पक्ष लेते हैं तब तो भगवान साक्षात दिखते हैं अजित के रूप से या कूर्म के रूप से या वराह के रूप से नरसिंह के रूप से, ये तो दिख रहा है साक्षात कि भगवान इनका पक्ष ले रहे हैं देवताओं का, तो भगवान साक्षात दिख रहे हैं। लेकिन जब असुरों का पक्ष ले रहे हैं या यक्ष राक्षसों का पक्ष ले रहे हैं रजोगुण या तमोगुण की वृद्धि में, तब तो भगवान नहीं दिखते, ये प्रश्न उठता है। तो फिर भगवान कैसे कह सकते हैं कि मैं सभी का, मैं जब जैसे जैसे वृद्धि का समय होता है वैसे वैसे अनुरूप में मैं उनमें प्रवेश कर जाता हूं। इसका उदाहरण जी गोस्वामी पाद और अन्य आचार्यों ने इस तरीके से लिखा है, बड़ा सटीक उदाहरण है। जैसे कोई पारा है, अगर कांच में हम रखेंगे तो वो पारदर्शित होगा, दिखेगा हमें पूरा कि हाँ ये पारा है, ये लुढ़क रहा है, इस तरीके से हम देख सकते हैं। लेकिन अगर उसी को हम किसी धातु के अंदर रखें, किसी लोहे के धातु में, किसी लोहे के पात्र में या किसी अन्य पात्रों में लिखें जिसमें पारदर्शिता नहीं है, तो फिर हमें वो पारा नहीं दिखेगा। तो सतोगुण क्या है, कांच की तरह है, एकदम स्वच्छ पारदर्शी। तो देवता सतोगुण में स्थित हैं, तो इसलिए जब भगवान उनके साथ उपस्थित होते हैं तो भगवान सभी जन सामान्य को, असुरों को भी दिखते हैं, यक्षों को भी दिखते हैं और देवताओं को भी दिखते हैं, और यही शास्त्रों में वर्णन है। लेकिन जब रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि होती है तो भगवान उनके साथ में भी रहते हैं, क्योंकि वो उनकी वृद्धि का समय है, तमोगुण की वृद्धि का समय है या रजोगुण की वृद्धि का समय है, तो भगवान उनके साथ रहते हैं लेकिन दिखते नहीं है, ऐसा इसको समझा जा सकता है। तो यह हुआ कि भगवान सम है, सभी का साथ देते हैं। फिर इसका उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए एक दृष्टांत दे रहे हैं। दृष्टांत क्या, ये कथानक ही सुना रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, जो बोल रहे हैं परीक्षित महाराज के आपके पितामह हुए युधिष्ठिर महाराज, उन्होंने भी सभा में जब एक बड़ा ही व्यतिक्रम देखा कि शिशुपाल ने एक के बाद एक कई गालियां दी। यहां पे भी एक दृष्टांत देखने योग है। एक सिद्धांत, जैसे कई लोग बोलते हैं कि 100 गालियों के बाद ऐसा भगवान ने वचन दिया था कि 100 गालियों के बाद मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, लेकिन ऐसा शास्त्रों में से प्रमाणित नहीं होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि भगवान की भगवत्ता 100 गालियों के बाद प्रभावित हो जाएगी, क्योंकि अभी हम देख ही चुके हैं पिछले श्लोकों में और आगे वाले श्लोकों में भी हम देखेंगे कि भगवान को जो 23वां श्लोक था क्या कि निंदा स्तुति सत्कारात अन्यकार्थान कलेवरम। तो जो देहधारी है, चूंकि उन्होंने देह अध्यास है, उन्होंने मान रखा है कि मैं शरीर हूं, इसलिए उनको निंदा स्तुति और सत्कार से प्रभाव पड़ता है, लेकिन भगवान में तो देह अध्यास है ही नहीं, है ना, वो तो सच्चित आनंद घन स्वरूप है, तो उनमें ये बात घटित नहीं होती कि उनमें निंदा स्तुति स्तवन हो। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि 100 गालियों के बाद किसी को प्रभाव पड़े? प्रश्न उठता है ना कि ऐसा क्या हो गया भगवान में कि भाई 100 गालियों के बाद, लेकिन ये सिद्धांत ठीक नहीं है। सिद्धांत ये था जो महाभारत और बाकी ग्रंथों में भी देखने में मिलता है कि जब शिशुपाल जब तक भगवान की निंदा कर रहा था तो जितने भक्त वहां बैठे थे, युधिष्ठिर महाराज और जितने भी पांडव थे और अन्य भक्त थे विदुर इत्यादि, तो विदुर इनको बड़ा क्रोध आ रहा था, बड़े तिल मिला रहे थे ये भक्त लोग। अब भक्त भगवान की निंदा कैसे सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते। लेकिन फिर भी तो भगवान ने कहा देखो कोई कुछ नहीं कहेगा, जो कुछ कहा जा रहा है मुझसे कहा जा रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना, तो कोई कुछ नहीं कहेगा। तो भगवान एकदम सुनते जा रहे थे, जितनी भी निंदा स्तुति वो करता जा रहा था, निंदा बरसना कि तू काला है, तू कपटी है, लंपट है, जो भी है, जिस तरीके से बोलना सब बोलते जा रहा था। लेकिन जब वह भक्तों की निंदा करने लगा, जब शिशुपाल भक्तों की निंदा प्रारंभ करता है, तो ये भगवान से सहन नहीं होता, तब वह अपने चक्र से उसका गर्दन ग्रीवा को अलग कर देते हैं, कर्तन कर देते हैं। तो ये उसमें सिद्धांत है कि भगवान किसी भी तरीके से भक्तों की निंदा को सहन नहीं कर सकते, तो वो वहां पे हुआ था। तो शिशुपाल का जैसे देखा गया है कि वह अत्यधिक निंदा करता था, दिन रात निंदा करता था, फिर भी उसको कभी भी कोढ़ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो ये सारे सिद्धांत पर प्रस्तुत किए गए इस अध्याय में कि मुख्य प्रयोजन क्या है, भगवान की स्मृति। कैसे कर रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, अब हम लोग भक्ति करते हैं और हम लोग कौन सी भक्ति कर रहे हैं? साधन भक्ति कर रहे हैं, अभी हम रागानुग भक्ति में नहीं है। जब व्यक्ति रागानुग भक्ति की स्थिति पे आ जाता है तो अगर भगवान के प्रति कभी ईर्ष्या भी करता है, जैसे ग्वाल बाल है सखा, उनको ईर्ष्या होती है कि क्यों काना तुमने इतने लड्डू खा लिए, मैं तुमसे ज्यादा खा के बताऊंगा, ईर्ष्या है ना। अब भगवान किसी को पराजित कर देते हैं, किसी सखा को, तो फिर वो इस सखा बोलता है देखना कल मैं ज्यादा माखन खा के आऊंगा और तुझे पराजित करके दिखाऊंगा, ईर्ष्या है, एक मात्सर्य है। लेकिन ये कौन सा मात्सर्य है? अनुकूल भाव वाला, कि इससे भगवान को सुख प्राप्ति होती है। चक्रवर्तीपाद ने इसकी बड़ी अच्छी विवेचना की है और श्रील प्रभुपाद ने भी, जैसे कि हमने पहले ही बताया कि तीन साढ़े तीन पेजों की इसमें विस्तृत टीका लिखी है। तो आइए हम अब श्रील प्रभुपाद के जो वचनामृत हैं उसका आस्वादन करेंगे। तात्पर्य, इस श्लोक में किसी को इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाना चाहिए कि चूंकि कृष्ण पर अनुकूल प्रार्थनाओं या प्रतिकूल निंदाओं का कोई असर नहीं होता, इसलिए परमेश्वर की निंदा ही की जाए। अब कोई सोच सकता है कि मैं तो भगवान की निंदा करूंगा, है ना, स्तुति करने से क्या फायदा। और जैसे आगे आने वाला श्लोक बोल भी रहा है, क्या बोल रहे हैं कि जैसा अभिनिवेश बैर भाव से होता है वैसा भक्ति योग से नहीं होता। स्वयं नारद मुनि कह रहे हैं कि यथा वैरानुबंधेना मर्त्य अन्यतामिता ना तथा भक्ति योगेना। भक्ति योग से ऐसा स्मरण इतनी तन्मयता नहीं होती जैसा कि बैर अनुबंध से होता है। तो कोई भक्त सोचे कि चलो तो अच्छी बात है, मैं भी भगवान से बैर करता हूं, तो इसमें घाटा क्या है? तो इसमें किसी भी भक्त की बहुत बड़ी हानि हो सकती है अगर कोई ऐसा सोचे कि मैं बैर भाव से भगवान की स्तुति करता हूं। इसमें हानि यह हो जाएगी कि अगर बैर भाव पूर्णतः स्थापित नहीं हुआ। जैसे शिशुपाल, दंतवक्र, कंस, इन लोगों का बैर भाव था भगवान से, लेकिन वो कैसा था? सतत था, है ना। ऐसा नहीं कि एक घंटे के लिए बैर हुआ और बाकी 23 घंटे फिर अपनी मौज मस्ती में है, तो ऐसी बात नहीं है। उनका जो बैर भाव है वो कैसा है? सतत। जैसे कि बताया है, शिशुपाल जब से बोलना शुरू किया था कल भाषणात, जैसे कल कल तोतली बालू में बोलता है, तो जब से ही कृष्ण को गाली दे रहा है, पानी पी पी के गाली दे रहा है। मैंने सुबह उठता था और उससे सोने तक केवल एक ही काम था उसका, कि भगवान की भर्त्सना करना, भगवान की निंदा करना। तो ऐसी हम भर्त्सना कर सकते हैं क्या? कदाप जी नहीं। ऐसा हम भजन नहीं कर पा रहे तो भर्त्सना कैसे करेंगे, है ना। इतना जब भी नहीं होता हमसे कि 24 घंटे जब कर सके, तो यह भी संभव नहीं है कि भगवान की हम निंदा भी कर सकें। तो इसलिए फिर आगे 29वां श्लोक इसी परिच्छेद में आएगा, इसी अध्याय के, कि 29वें श्लोक में बताएंगे कि जो वेण है ना, प्रश्न ये उठा था कि वेण ने तो थोड़ी सी निंदा की थी भगवान को और उसको नरकगामी होना पड़ा, और यहां पे शिशुपाल दंतवक्र जन्म पर्यंत जब से उन्होंने होश संभाला तब से उनकी मृत्यु हो जाती है, तब तक केवल एक ही काम किया है, भगवान की स्तुति। उनको तो कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा वो भगवान के शरीर में प्रवेश कर गए ज्योति स्वरूप से, है ना। उनको निर्वाण प्राप्ति हो गई, मोक्ष प्राप्ति हो गई, लेकिन इसको तो कोढ़ हो गया, या फिर इसको नरकगामी होना पड़ा वेण को। तो यहां पे भाव यह है कि अगर बैर अनुबंध से कोई अगर करे तो फिर करे कैसे? वो सतत 24 घंटे, और उसके बाद भी सतत चलते रहना चाहिए, केवल एक दिन नहीं। ऐसा ही अनुबंध बना रहेगा, ऐसा ही भाव जब निरंतरता बनी रहेगी, तब कहीं जाके उसको भगवान की प्राप्ति होगी। जैसे जितने भी असुर आए वृंदावन में, जितने भी असुर आए, पूतना आई, अघासुर आए, ये आए, तो इनमें भी भगवान के प्रति बैर अनुबंध है, बैर भाव से आए, लेकिन भगवान के साथ संयोग हुआ, भगवान का दर्शन किया। अब जैसे पूतना है, तो पूतना का कैसे संयोग है? वात्सल्य भाव दिखा तो रही है ना, कम से कम कुछ क्षण के लिए, भले ही छद्म वेश से दिखा रही है, लेकिन वात्सल्य भाव दिखा रही है, तो भगवान ने वो भाव देखा। अघासुर जैसे है, अब योगी लोग सतत प्रयास करते रहते हैं कि कभी भगवान के ऊपर एक क्षण चिंतन लग जाए, जब लाखों हजारों वर्ष वो समाधिस्थ रहते हैं, तब कहीं जाके एक बार उनको ब्रह्मानुभूति या भगवान का जो परमात्मा स्वरूप होता है, चतुर्भुज स्वरूप, उसके दर्शन होते हैं हृदयाकाश में। लेकिन अघासुर ने तो साक्षात पूरा का पूरा जो अखंड ब्रह्मांड नायक, अखिल घन सच्चिदानंद स्वरूप है, पूरे द्विबपु में, द्विभुज बपु के स्वरूप है, वो के वो पूरे उसके मुख में प्रवेश कर गए। तो उसकी मुक्ति में कुछ संदेह हो सकता है क्या? नहीं। बकासुर, उसके मुख में भी भगवान एक बार तो गए थे। तो जब भगवान ही साक्षात किसी के साथ संपर्क स्थापित कर लें, और वो भी अपने शरीर से, जो सच्चिदानंदनात्मक शरीर है, कृपया सब लोग अपने मोबाइल साइलेंट पर कर लें। तो ऐसे जब भगवान के साथ संबंध हो जाए तो उसकी मुक्ति में कोई फिर संशय नहीं हो सकता। यहां पे भी यही है। तो यहां पे अब ये लोग तो भगवान के जो जितने भी हैं, और इनका सबका एक भूत भी है, जितने भी असुर वृंदावन में आए उनका भूत है, कि उनका कहीं ना कहीं भगवान से कोई संबंध था, जैसे पूतना हुई या फिर ये हुई, तो ये पूर्व जन्म में कोई ना कोई थे और उनका भगवान के साथ कुछ अच्छा संबंध था, केवल एकाध त्रुटि के कारण उनको ऐसा जन्म मिला, ये अलग बात है। ठीक इसी प्रकार से शिशुपाल दंतवक्र को भी देखें, तो इनका भी पूर्व जन्म है, सभी लोग जानते हैं कि ये जय विजय है, है ना, ये भगवान के नित्य पार्षदों में से हैं, और नित्य पार्षदों में कभी भी उनकी भावनात्मक ह्रास नहीं हो सकता, भावनात्मक हानि कभी भी नहीं होगी, कि अभी तो भगवान के सानिध्य में है तो भगवान के कुशलता की कामना कर रहे हैं, लेकिन जब असुर योनि में आ गए तो फिर भगवान की कुछ अमंगल कामना करने लगे। अमंगल कामना निश्चित कर रहे हैं ये लोग, हिरण्यकश्यपु हो या हिरण्यक्ष हो, दंतवक्र हो या शिशुपाल हो, कुंभकर्ण हो या रावण हो, ये लोग भगवान की अमंगल कामना कर रहा है। लेकिन एक बिंदु यहां पर है, क्या है? वो है कि उनका सतत कीर्तन हो रहा है, सतत स्मरण हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आगे कह रहे हैं प्रभुपाद कि यह नियमित विधान नहीं है कि भगवान से भगवान की निंदा की जाए, यह एक नियमित विधान नहीं है। मतलब वेदोक्त नहीं है या शास्त्रोक्त यह वाणी नहीं है कि शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, क्योंकि एक सिद्धांत है। क्या है सिद्धांत? कि व्यक्ति को अपवाद को कभी नियम नहीं बनाना चाहिए, है ना। एक्सेप्शन कैन नॉट बी अ रूल। अपवाद को अगर आपने नियम बना दिया तो क्या होगा? तो हमारी बहुत हानि हो जाएगी। अब ये लोग हैं शिशुपाल, दंतवक्र, रावण, कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, ये सब अपवाद हैं। ये भगवान के नित्य परिकरों में से एक है जो वहां से नीचे आए। और वास्तव में नीचे क्यों आए, इसका भी सिद्धांत हमारे आचार्यों ने प्रतिपादित किया है कि भगवान को युद्ध करने की इच्छा हुई। अब उनके द्वारका में, वैकुंठ में कोई उनसे युद्ध तो करता नहीं है। हाँ, भगवान के जो सखा है गोलोक में या वृंदावन में, उनके साथ युद्ध होता रहता है, वो अलग बात है साक्य भाव में। लेकिन ऐसे बैर भाव से तो वैकुंठ में कोई भी भगवान से युद्ध नहीं करता। अब भगवान की भी इच्छा हुई कि मुझे युद्ध करना है, तो इसीलिए इस इच्छा के कारण उन्होंने चतुष्कुमारों को, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार को उन्होंने निमित्त बनाया और इन दोनों को, जय विजयों को क्या किया, वहां से नीचे गिराया। कहां से? वैकुंठ से। अब एक सिद्धांत और यहां पर दृष्टव्य है। क्या? अब एक तरफ तो भगवत गीता में लिखा है क्या, यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परम, है ना, कि वहां जाने के बाद कोई वापस आता ही नहीं है। फिर ये दो लोग कहां से आ गए, जय विजय, है ना। या तो शास्त्र गलत हो सकते हैं, या फिर ये कैसे, या तो फिर ये लीला कल्पित होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। जीव गोस्वामी पाद ने एक बड़ा अच्छा सिद्धांत दिया कि ये जो लीला है कि जय विजय वैकुंठ से यहां आ रहे हैं, पृथ्वी लोक पर आ रहे हैं, ये लीला कहां की है? रमा वैकुंठ की है। एक तो है नित्य वैकुंठ, परव्यूम वैकुंठ, मतलब सभी लोगों ने चित्र का दर्शन किया होगा जिसमें एक विरजा नदी है, विरजा नदी के ऊपर कैलाश है और कैलाश के ऊपर फिर वैकुंठ आता है, परव्यूम वैकुंठ कहते हैं उसको। मतलब इस एक पाद विभूति का अंश नहीं है, वो त्रिपाद विभूति जो भगवान का शाश्वत धाम है उसका अंश है। तो वो वैकुंठ अलग है। फिर आठवें स्कंद के पांचवें अध्याय में, संभवतः पांचवा छठवां ही या आठवां श्लोक है, उसमें भगवान कहते हैं कि रमा प्रीडियन अभूत, कि रमा देवी को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने एक वैकुंठ की यहां पर कल्पना की, एक वैकुंठ बनाया। कहां पे? इसी ब्रह्मांड के अंदर। ये हमारा जो ब्रह्मांड है, इसी ब्रह्मांड के भीतर भगवान ने एक रमा वैकुंठ की कल्पना की, इसी ब्रह्मांड के अंदर। तो अब कहने को वो वैकुंठ भी है वहां पे। जैसे हम सभी लोग ये सिद्धांत देते हैं और प्रभुपाद जी ने कई बार दिया कि जैसे कोई एम्बेसी होती है, तो एम्बेसी, जैसे भारत की एम्बेसी अमेरिका में है, तो उस एम्बेसी के अंदर जो नियम चलेंगे वो भारत के चलेंगे। या भारत में अमेरिका की कोई एम्बेसी है तो उस एम्बेसी में अमेरिका के नियम चलेंगे, भारत के नियम नहीं चलेंगे। वहां पे बोलचाल, भाषा, नियम, जो भी कुछ है, जो भी एक दो एकड़ का वो क्षेत्र है, उसमें ऐसे ही नियम चलेंगे। उसको भारत नहीं कहा जाएगा, उसको क्या कहा जाएगा? एक प्रकार से अमेरिका ही कहा जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जब कोई वैकुंठ की एक शाखा यहां पर आती है जिसको रमा वैकुंठ कहा गया है, तो उसमें जो नियम चलेंगे वो कौन से रहेंगे? वैकुंठ के ही रहेंगे, इस ब्रह्मांड के नहीं रहेंगे। कि आप हम पुरुनालो का पुनागर्तो मर्जना, कि यहां पे आवागमन कुछ भी नहीं होगा, जैसा वहां वैसा यहां पे। केवल कुछ जीवों को भगवत साक्षात्कार आसान कराने के लिए कराया गया है। जैसे कई बार असुर लोग भी वहां प्रवेश गए, कर गए, है ना, जैसे भस्मासुर इत्यादि, कि भगवान शिव के पीछे पीछे दौड़ रहे थे और दौड़ते दौड़ते जब भगवान से अपने बचाव के लिए वहां पहुंचते हैं तो वो सीधे वैकुंठ में घुस जाते हैं। तो वो जहां वैकुंठ में घुसते हैं और उनके पीछे पीछे जो असुर भी जाता है वो कौन है? ये रमा वैकुंठ है। क्योंकि असुर तो वैकुंठ में जा ही नहीं सकते ना, अगर फिर वहां चले गए तो आ नहीं सकते। फिर वहां जाते भी और आते भी हैं। जैसे सनक, सनंदन, सनत कुमार इस वैकुंठ में अगर पहुंचे हैं तो फिर उनको वापस नहीं आना चाहिए था। फिर क्यों वो यहां के जो ऊपर के लोग हैं, जनलोक, तमलोक, महरलोक या सत्यलोक, वहां पर क्यों आ रहे हैं? तो नहीं आना चाहिए उनको। तो चूंकि ये रमा वैकुंठ की लीला है, इसलिए वहां से जो सिद्ध जीव है, सनक सनंदन सनातन कसमत कुमार या ब्रह्मा जी हुए या शिव जी हुए, ये लोग जो भगवत परिकर हैं या भगवत स्वरूप ही हैं, वो लोगों का आवागमन वहां लगा रहता है। लेकिन जो जीव कोटि के हैं उन लोगों को इतना जाना संभव नहीं है वहां पे। तो इसीलिए यहां पे बोल रहे हैं प्रभुपाद जी ने कहा कि यह नियमित विधान नहीं है। भगवान सभी को जो भक्ति करनी चाहिए वो कैसे करनी चाहिए, आगे कह रहे हैं भक्ति योग का अर्थ है अनुकूलेन अनुकृष्णानुशीलनम, अर्थात अन्याविलासता शून्यम जन्म ने ज्ञान कान ज्ञान कर्मादि अनावृतम, है ना, कि अन्य अविलासिता शून्यम, ये उत्तमा भक्ति की परिभाषा है। एक होती है न्यूना भक्ति, जैसे हम लोग कर रहे हैं, हम लोग उत्तमा भक्ति करने का प्रयास करना चाहते हैं लेकिन अभी कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि अन्य अविलासिता शून्यम है नहीं अभी, हम है ना, हम प्रयास कर रहे हैं उस ओर। लेकिन जब कोई व्यक्ति अन्य अभिलाषाओं से शून्य हो जाए, केवल एक भगवत चिंतन करे और कुछ ना करे, तब वह व्यक्ति उत्तम भक्ति में स्थित कहलाएगा। तो अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद अनावृतम, और ज्ञान और कर्म से भी अनावृत है, मतलब उसमें ज्ञान की भी पिपासा नहीं है। और ज्ञान मतलब षड्दर्शन, है ना, मीमांसा वैशेषिका और वेदांत सूत्र, ये सब जो है ये ज्ञान में आते हैं, इसका अध्ययन करना अध्यापन करना और इसके माध्यम से भगवान को समझना, ये ज्ञान अनुशीलन कहलाता है। भागवतम पढ़ना ज्ञान अनुशीलन में नहीं आता, ये भक्ति का अंग है। तो ज्ञान कर्मादि, कर्म मतलब कर्म कांड करना, क्यों करना कर्म कांड, जिससे मुझे कुछ फल की लाभ की प्राप्ति हो, तो ये ज्ञान में आ जाता है। तो इससे भी अनावृत होना, भक्ति इससे भी अनावृत हो, फिर क्या हो, अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, अनुकूल भाव से कृष्ण का अनुशीलन करना, ये कृष्ण भक्तों का अनुशीलन करना, इति उत्तमा भक्ति, है ना, भक्ति उत्तमा, तो ये भक्ति उत्तमा भक्ति है। तो ये उत्तमा भक्ति करने का हमें प्रयास करना है। तो इसमें नियम क्या हो गया, अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, अनुकूल भाव से कृष्ण का अनुशीलन करना चाहिए, ये सीधी सीधी सिद्धांत की बात हुई। क्यों, अगर अनुकूल भाव से अगर हम कृष्ण अनुशीलन नहीं करेंगे तो होगा क्या, अगर हम प्रतिकूल भाव से करने लगे तो अगर हमारा चिंतन, जैसे शिशुपाल दंत वक्र का सतत चिंतन था, है ना, यहां पे श्लोक में भी दृष्टव्य है, अनुबंधेन, अनुबंधेन मतलब सतत, है ना, अनुपूर्वक बंध जब शब्द आया तो इसका अर्थ है सतत, है ना, निरंतर शत्रुता से, तो ये निरंतर शत्रुता आवश्यक है। अगर निरंतरता नहीं रही शत्रुता में तो फिर हमारा शत्रुता करना व्यर्थ हो जाएगा और हमारी गति कैसी हो जाएगी, वेण की तरह हो जाएगी, वेण की तरह। तो जिस तरीके से वेण नरकगामी हुआ, बाद में फिर उनका उद्धार किया गया प्रथु महाराज के द्वारा, वो अलग बात है, लेकिन हमारी स्थिति ऐसी ही हो जाएगी। इसलिए वैर अनुबंध से हम कभी भी भगवान का भजन नहीं कर सकते। आगे कह रहे हैं, मनुष्य को चाहिए कि अत्यंत अनुकूल होकर कृष्ण की सेवा करे, यही असली आदेश है। यहां कहा गया है कि यद्यपि शत्रु कृष्ण की प्रतिकूल सोचता है, किंतु भगवान ऐसी अभक्तिमयी सेवा से अप्रभावित रहते हैं। अब भगवान क्या देखते हैं ये दृष्टव्य नहीं है, हमारा कैसा भाव भगवान के प्रति उत्पन्न हो रहा है ये महत्वपूर्ण है। वे इस तरह से शिशुपाल को तथा उसी भाव से शत्रु भाव रखने वाले अन्य बद्ध जीवों को भी बर देते हैं, किंतु इसका अर्थ यह भी नहीं कि मनुष्य भगवान के प्रति शत्रु भाव रखे। यहां पर अनुकूल होकर भक्ति करने पर बल दिया गया है, जानबूझकर भगवान की निंदा करने को नहीं। इसमें सिद्धांत क्या है, जो 7-8 श्लोक है 23 से लेके 29 तक, इन 7-8 श्लोकों का सिद्धांत यह नहीं है कि बैर भाव से भगवान की स्मृति करें। सिद्धांत क्या है, निरंतर स्मृति करना है, यह महत्वपूर्ण है। और हम साधक हैं, साधन भक्ति में लगे हुए हैं, तो श्री रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति रसामृत सिंधु में जो नियम बताए हैं कि अनुकूलस्य और प्रतिकूल, है ना, अनुकूलस्य वर्जन, अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम, कि अनुकूल जो है उसका संकल्प करे और प्रतिकूल है उसका वर्जन कर दे। तो ये सिद्धांत जो षडंग भक्ति का सिद्धांत है, भक्ति के जो छह अंग है उसमें से दो सिद्धांत ये है कि अनुकूल को स्वीकार कर लेना और प्रतिकूल को वर्जन कर देना, त्याग कर देना। तो यहां पर अनुकूल होकर भक्ति करने पर बल दिया गया है, जानबूझकर भगवान की निंदा करने को नहीं। अब ऐसा भी कहा गया है, निंदाम भगवतः श्रणवतः तत्परस्य जनस्य वा ततो नापेति या सोपी याति अधा शुक्रतात् अच्युतः शुक्रतात् च्युतः। ये दसम स्कंद के 70वें अध्याय का श्लोक है, 74वें अध्याय का श्लोक है, 40वें श्लोक। जब वहां पे शिशुपाल का वध होता है तो बताते हैं कि निंदाम भगवता श्रवण, जब भगवान की निंदा सुने या तत्परस्य जनस्वा या भक्तों की निंदा करें, भक्तों की निंदा अगर जैसे या तो भगवान की कोई निंदा सुने या भक्तों की निंदा सुने, ततो अगर ऐसा कोई सुन लेता है या भगवान की या भक्तों की तो क्या होता है, ततो ना पेती या तो उसको ये भगवान की भक्ति बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होती, वो भगवान की भक्ति से नीचे आ जाता है। सो अपि याति अधा वो नीचे चला जाता है और कहां से सुकृतात् च्युतः, जितनी भी उसने सुकृति अर्जन की है, जो हमने अभी तक भजन किया होता है, जो कुछ भी किया है, यज्ञ किया है, जप किया है, तप किया है, होम किया है, सब कुछ क्या हो जाएगा च्युतः, सब कुछ से वो नीचे गिर जाएगा। तो एक तो ये सिद्धांत है। फिर चक्रवर्तीपाद ने इसी सिद्धांत के लिए उन्होंने कहा सत्यम, टीका में अगर सत्यम शब्द आता है तो उसका अर्थ होता है अर्ध स्वीकृति। जैसे हम लोग से कोई बात कहे और हम कहे ठीक है, इसका मतलब हम पूर्ण सहमत नहीं है, सहमत है लेकिन पूर्ण सहमत नहीं है। तो चक्रवर्तीपाद भी इस सिद्धांत से पूर्ण सिद्धांत सहमत नहीं है, तो वो अपना एक प्रस्तुतिकरण वहां पर देते हैं। वो कहते हैं ठीक है, निंदा तो गोपियां भी करती हैं कई बार, है ना, कई बार बाल सखा भी भगवान की निंदा कर देते हैं, तो उस पर फिर क्या कहें, वो भी तो निंदा कर रहे हैं ना। जैसे गोपी, जैसे भ्रमर गीत में श्री राधा रानी का श्लोक है, सभी लोगों ने सुना होगा, मृगरुवा कपिंद्रम विद्यते लुब्ध कर्मा विद्यते लुब्ध धर्मा स्त्रियम कृतम विरूपाम स्त्रीजिता कामयानाम बलिमपि बलित्वमावेष्टद्वात्मवेक्षवत्या तदलमम सख्यै दुस्तजस्तत्कथार्था। भाव ये है कि अब ये जितने भी काले दिख रहे हैं ना, राधा रानी को कृष्ण के प्रति बड़ा मान है, तो इसलिए वो उस मान भंगिमा में यह श्लोक कह रही है। ये माधना के महाभाव है, हम लोग इसकी कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जो भागवतम में दिया है उसका ही मैं केवल अनुवाद करूंगा कि मृगुरिवाह कपिंद्रा विद्यते लुब्ध धर्मः, कि ये कोई एक हुए जब उन्होंने, जब वो राजा थे तो उन्होंने पीछे से छुपकर मृगेंद्र कपिंद्र, कपिंद्र अर्थात बाली, है ना, सब लोगों को सुग्रीव बालू की कथा मालूम है कि बाली को भगवान राम ने किस तरीके से पीछे से मारा था। तो बोले ये धर्म धर्म का उपदेश तो खूब देते हैं भगवद गीता में, लेकिन इनका धर्म आचरण देख लो, है ना, कि पीछे से ये वार करने वाले हैं। तो मृगरूपे कपेंद्र विद्यते लुब्ध धर्म, फिर कह रहे हैं ये तो छोड़ो, अब इनकी वीरता देख लो, इन्होंने स्त्रियों के भी नाक कान काट डाले। स्त्रियम कृता विरोपाम स्त्रिजता कामयानाम, कि एक स्त्री इनके पास इनकी अभिलाषा से इनका रमण करने के लिए यहां पे आई इनके पास, इन्होंने उनको संतुष्ट तो किया नहीं, उनका पाणिग्रह तो किया नहीं, अभी तो क्या किया उसको कुरूप और कर दिया, है ना। अब ये कोई बात हुई कि कोई आपके पास आ रहा उसको कुरूप कर देना, और तो और छोड़ो, तो बोले एक कोई हुए उन्होंने बलिम अपि बलिमत्वा, बलि ने पूरा अपना साम्राज्य दे दिया, अपने आप को भी दे दिया, और उससे सब कुछ छीन लेने के बाद उसको बांध भी दिया, नाग पास से बांध दिया, ये कोई बात हुई। तो बोले ऐसे लोगों से तो हमें कोई सख्यता करना ही नहीं है। तो यहां पे बोल रहे हैं तद अलम सख्यई, ऐसे जो कपटी लोग हैं, कहने का उनका भाव राधा रानी का, कि ऐसे जिनमें कोई ना धर्म का आचरण है, जो अपनी बात से ही अडिग हो जाते हैं, जो अपने बात से ही डिग हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों से हमें सख्ता नहीं करते। तो बोल रहे हैं कि तद अलम सखे दुष्ट जस तत्कथार्थम, और उनकी कोई कथा भी हमें नहीं सुननी है ना। तो अब कोई कहे कि यह भी तो निंदा है, तो यह निंदा कौन सी निंदा है? ऐसी निंदा सुनकर श्याम सुंदर को बड़े हृदय में क्या होती है? प्रसन्नता होती है। जब ऐसे वचन वो गोपियों के इतने सुंदर वचन सुनते हैं तो उनके हृदय में प्रेम का उद्रेक हो जाता है। तो ये एक अलग बात है। तो इसको चक्रवर्ती पाद ने कहा है, क्या है ये? अनुकूल भाव है ये, है ना, अनुकूलमयी निंदा है ये। लेकिन जो शिशुपाल इत्यादि जो कर रहे हैं निंदा, उसको क्या बोलेंगे? प्रतिकूल निंदा। क्योंकि उस निंदा से भगवान को संतुष्टि नहीं होती, लेकिन उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि वो ब्रह्म स्वरूप है, है ना। जैसे अब मैंने कुछ लिया ही नहीं तो मुझे कुछ पता मिलेगा ही नहीं, तो भगवान को ना स्तुति निंदा से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस प्रकार की जो अनुकूलमयी निंदा है, इससे भगवान को बड़ा संतोष प्राप्त होता है। इसलिए ये तो ठीक है, ये तो ग्रहणीय वस्तु है, गोपिकाएं इस प्रकार से निंदा करें चल जाएगा। लेकिन शिशुपाल इत्यादि जो प्रतिकूल भाव से निंदा कर रहे हैं, वह हमारे लिए अनुकरणीय नहीं है। अब प्रतिकूलमयी जो निंदा है, चक्रवर्ती पाद इसको बोलते हैं, इसमें भी दो भाग है। प्रतिकूल में क्या है? एक तो है अभिनिवेशेन वश, कि सतत अभिनिवेश है, कि भगवत अभिनिवेशेन उक्त्या, कि भगवान का सतत अभिनिवेश है। जैसे शिशुपाल दंतवक्र रावण कुंभकर्ण, इनका सतत अभिनिवेश है। और एक दूसरा है कि भगवत अन अभिनिवेशेन, कि भगवान में उतना अभिनिवेश नहीं है। जैसे वेण का था कि वो भी भगवान की निंदा कर रहा था, तो फिर उसको क्या हुआ? नरकगामी होना पड़ा। चक्रवर्ती पाद ने यहां पर सिद्धांत दिया कि अच्छा ठीक है, मान लिया जैसे शिशुपाल इत्यादि जैसा भी कोई सतत निंदा कर रहा है, तो उसको फिर भगवान की भक्ति कैसे बाद में प्राप्त हो रही है, या मोक्षगामी कैसे हो रहा है वो? ये भी एक सिद्धांत आता है। तो उन्होंने कहा कि जैसे किसी ने 5 गालियां दी, कोई भी अपशब्द दुर्वचन कहे भगवान के प्रति, और बाद में कहा ऐसा है कृष्ण, तो ऐसा है कृष्ण, कृष्ण कहने से मात्र से क्या हुआ? उसने जितने भी अपराध किए थे या फिर जितने पाप किए थे, अपराध तो नहीं कर रहा है वो, तो जितने पाप किए थे वो नाम लेने से समूल नष्ट हो गए, और साथ में कुछ अंश में सुकृति भी वृद्धि हुई। और फिर इस तरीके से बार बार करते रहने से, जब सतत वो भगवान को क्या कर रहा है? निंदा कर रहा है, तो उसकी सुकृति बढ़ती जा रही है, क्योंकि नाम तो ले रहा है ना वो, क्योंकि बाकी जो दुर्वचन कहे जा रहे हैं भगवान के प्रति, विगित वचन कहे जा रहे हैं, तो वह गणनीय नहीं है, उसकी काउंटिंग नहीं होगी। गणना किसकी होगी? कितना हरिनाम लिया जा रहा है, कितना भगवान का नाम लिया जा रहा है। तो उससे उसकी भक्ति थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है, सुकृति बढ़ती जा रही है। और जब प्रचुर मात्रा में सुकृति बढ़ जाएगी, तो भगवान जैसे जगाई मगाई के ऊपर कृपा कर देते हैं और बाद में वो बड़े उत्तम कोटि के भक्त होते हैं, तो ऐसी कृपा हो जाती है, क्योंकि वो निरंतर क्या कर रहे हैं? नाम कर रहे हैं। तो ये सिद्धांत है। लेकिन जब भगवत अन अभिनिवेश है ना, कि भगवान में तो अभिनिवेश है नहीं, जैसे ये लोग दंतवक्र शिशुपाल, ये मन में क्या सोच रहे हैं? मन में कृष्ण की छवि ही है, भले ही गाली दे रहे हैं, भले ही उनके दुर्वचन कह रहे हैं, लेकिन भगवान में अभिनिवेश है उनका। लेकिन बाकी लोग जो निंदा करते हैं, सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस हैं या फिर कोई भी है, या कोई असुर हुआ, लेकिन भगवान की निंदा करते समय अगर भगवान में उसका अभिनिवेश नहीं है, तो फिर उसकी क्या होगी? उसकी बड़ी दुर्गति हो जाएगी, उसको नरकगामी होना पड़ेगा। तो अभिनिवेश होना यानी भगवान का चिंतन, भगवान जब कुछ बोल रहे हैं तो भगवान का स्वरूप सामने आ जाना, तो भले आप निंदा कर रहे हो, स्तुति कर रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आपने भगवान का चिंतन तो किया ना, है ना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, तो जो भक्ति के जो नवधा भक्ति है उसमें तीसरा अंग यहां पर संपन्न हो रहा है। तो इसलिए यह सिद्धांत यहां पर बड़ा ही मतलब प्रगाढ़ करने वाला है, कि इसको गांठ बांध लेनी चाहिए कि अभिनिवेश होना महत्वपूर्ण है। कैसे हो रहा है यह महत्वपूर्ण है। अब चूंकि हम लोग साधन भक्ति में हैं और सतत भक्ति करते भी नहीं है, तो इसलिए हम प्रतिकूल भाव वाले में तो जाएंगे ही नहीं, और अनुकूलमय निंदा है वो भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि इतने हम योगी नहीं है। उसके साथ जब रागानुग भक्ति में जब किसी का प्रवेश हो जाता है, अभी हम साधन भक्ति के स्तर पर हैं, जैसे राधा रानी इत्यादि जो भगवान के नित्य परिकर हैं या नित्य सखा हैं, वो भगवान को कुछ भी कह सकते हैं और उससे भगवान को प्रसन्नता ही होती है, क्योंकि उनका अभिनिवेश है, ये अभिनिवेश शब्द यहां पे या फिर इस मूल श्लोक में अनुबंधेन है ना, बैर अनुबंधेन, तो अनुबंध शब्द यहां पे बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या अगर सतत स्मरण हो रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो फिर हमें ऐसे ही भक्ति करनी पड़ेगी, यानी भगवान की प्रीति पूर्वक ही भक्ति करनी पड़ेगी, अनुकूलमयी भक्ति ही करनी पड़ेगी। फिर आगे कह रहे हैं प्रभुपाद जी, अब हम इसको एक बार पाठ कर देते हैं पूरा क्योंकि समय पूर्ण हो रहा है। शिशुपाल द्वारा परमेश्वर में लीन होने की घटना भिन्न प्रकार की थी, क्योंकि अपने भौतिक जीवन के प्रारंभ से ही जय विजय को तीनों जन्मों तक परमेश्वर को शत्रु की भांति मानने का साप मिला था। उसके बाद उन्हें भगवत धाम लौटना था। जय तथा विजय भीतर भीतर जानते थे कि कृष्ण भगवान है, लेकिन अपने उद्धार हेतु वे जानबूझकर उनके शत्रु बने रहे। वे अपने जीवन के प्रारंभ से ही भगवान कृष्ण को अपना शत्रु समझने लगे थे, लेकिन उनकी निंदा करते हुए भी शत्रुवत विचारों के साथ साथ वे लगातार कृष्ण का नाम का जप करते रहते थे। इस प्रकार वे कृष्ण के पवित्र नाम का जप करने के कारण शुद्ध हो गए। यह जान लेना चाहिए कि निंदक भी भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से अपने पाप पूर्ण कृत्यों से मुक्त हो सकता है। अतएव जो भक्त भगवान के अनुकूल रहकर सेवा करता है उसकी मुक्ति सुनिश्चित है। तो अनुकूल भाव से भक्ति करने पर उसकी मुक्ति सुनिश्चित है। जैसे एक बात स्मरण आ रही है, 87वां अध्याय वेद स्तुति दशम स्कंद का, जीव गोस्वामी ने दूसरे श्लोक की टीका में एक बड़ा अद्भुत वाक्य दिया। जैसे कई बार हम भक्तों के बीच में एक भ्रम उत्पन्न हो जाता है, कई बार लोग सोचते हैं कि अरे मेरा जप में भाव तो है ही नहीं, मैं जप करता हूं लेकिन भगवान का कोई स्मरण नहीं होता, तो ऐसा जप करना क्या ठीक है, क्या इससे हमें भगवान की भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी या भगवान की प्राप्ति हो जाएगी क्या, ऐसा कई बार मन में कुछ ऐसे संशय उत्पन्न होते हैं। तो उस पर जीव गोस्वामी पाद ने लेखनी में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति साधन भक्ति में लगा हुआ है, भले ही उसको हरिनाम लेते हुए उसको भाव बन रहा है या नहीं बन रहा है उससे मतलब नहीं है, अगर वो साधन भक्ति में नियम पूर्वक लगा हुआ है तो निश्चित उसको भगवत प्राप्ति होगी। मतलब बहुत बड़ी बात है, बस जो उसका साधन है उसमें वो लगा रहे, जो विधि निषेध है उसको अच्छे से अनुशीलन करे, भगवान निश्चित उसके ऊपर कृपा करेंगे। अगर किसी का भाव बन रहा है तो फिर कहना ही क्या, मतलब उसकी तो फिर कृपा उस पर होने वाली है कि उसके ऊपर हो गई है तभी तो भाव बन रहा है। लेकिन अगर कोई साधन भक्ति में लगा रहा जीवन पर्यंत और मृत्यु दशा भी प्राप्त हो गई उसको, आखिरी दशा में आ गया है, तो निश्चित उसको भगवत कृपा प्राप्त होगी, वो इसी जीवन में भगवत धाम जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने शास्त्र और गुरु के ऊपर पूर्ण निष्ठा से पालन किया है। ये मतलब बहुत गंभीर वाक्य है, और हम लोगों को साधन भक्ति में दृढ़ता पूर्वक लगे रहने के लिए एक उत्साह प्रदान करता है कि भले हमारा भाव बने या ना बने यह अलग बात है, लेकिन हम साधन भक्ति में तो लगे रहे। इसी तरीके से उन्होंने एक बात और कहा कर्म कांड के विषय में, कि कर्म कांड में केवल क्रिया करने मात्र से क्या हो जाएगा, वह फल की सिद्धि हो जाती है। जैसे तीन बार आचमन किया कि ओम केशवाय नमः नारायण नमः माधवाय नमः, तो ऐसा करने मात्र से भले उसमें आपकी भावना है कि नहीं कि मैं शुद्ध हो रहा हूं, ऐसी भावना शायद बहुत कम ही लोगों की होती होगी कि मैंने तीन बार आचमन किया या 24 आचमन किए तो मेरी समूह सर्व शुद्धि हो गई है, ऐसी भावना हो सकता है कई बार बनती भी हो नहीं भी बनती हो। अगर बाय द वे भावना नहीं भी बने तो उस क्रिया मात्र से उसकी शुद्धि हो जाती है, उस कर्मकांड की उस क्रिया की, अगर कोई क्रिया मात्र कर ले तीन बार आचमन किया या 24 आचमन किए तो उससे क्या हो गई, उसकी शुद्धि हो गई। भली भावना है या नहीं है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि उसने शास्त्र के निर्देशों का पालन किया है। आगे चलते हैं, कहां गए, हाँ, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भयन शब्द की बड़ी ही सुंदर व्याख्या की है। भयन का अर्थ है भय से। जब गोपियां सुनसान रात्रि में कृष्ण के पास गई तो उन्हें अपने संबंधियों अपने पतियों भाइयों और पिताओं के द्वारा दंडित होने का भय था, किंतु उन सबकी परवाह ना करती हुई वे कृष्ण के पास गई। भय तो था ही, किंतु यह भय कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति को रोक नहीं पाया। मनुष्य को भूलकर भी यह नहीं सोचना चाहिए कि शिशुपाल की तरह शत्रु भाव से कृष्ण की पूजा की जानी चाहिए। आदेश यह है अनुकूलस्य ग्रहणम प्रतिकूलस्य वर्जनम, कि अनुकूल भाव को ग्रहण करे प्रतिकूल को छोड़ दे। मनुष्य को चाहिए कि वह प्रतिकूल कर्म त्याग दे और अनुकूल स्थितियों को ही स्वीकार करे। सामान्यतः यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की निंदा करता है तो वह दंडित होता है, जैसा भगवद गीता में कहा गया है। यानी निंदा नहीं करनी है, यही अपेक्षीय है, अपेक्षणीय है, यही अपेक्षा की जाएगी। भगवद गीता में कहा गया है 16:19, तान अहम दुष्टता क्रूरान संसारेषु नराधमान छिपाम्य अजस्रम अशुभम आसुरेषु एव योनिषु, कि उनको निश्चित रूप से मैं असुर योनि में फेंक देता हूं जो कोई दुष्टता द्वेषपूर्ण रूप से मेरी मेरे साथ संपर्क करता है। तो अगर फिर अगर ऐसा होता, क्योंकि वो सतत नहीं कर पाता तो इसलिए उसको नरकों में जाना पड़ता है, ये बात है। मनुष्य को चाहिए कि प्रतिकूल होकर कृष्ण को ना पूजे, अन्यथा उसे कम से कम एक जन्म में दंडित होना पड़ेगा जिससे वह शुद्ध हो सके। ये बड़ी गंभीर बात है। जैसे कई लोग धाम में आते हैं लेकिन धाम अपराध के कारण उनको एक दो जन्म अनेक लेने पड़ जाते हैं, कभी बंदर होते हैं, सूकर होते हैं, कुकर होते हैं। तो इसलिए चूंकि भगवान ने जो आदेश दिए हैं, अब चूंकि भगवान की नियमावली है, ऐसा आचार्यों ने जो नियमावली बनाई है कि धाम में रहते हुए किन नियमों का हम अनुशीलन करें और किन को हम त्याग दें, तो अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम वहां पे भी लागू होता है। तो इसलिए अगर कोई उसकी अवहेलना कर देता है जानबूझ के, है ना, दृढ़ होके, तो फिर उसको एक दो जन्म लेने पड़ सकते हैं शुद्ध होने के लिए। फिर आगे बोल रहे हैं, जिस प्रकार मनुष्य को चाहिए कि वह किसी शत्रु जैसे बाघ या सर्प का आलिंगन करके मरने का प्रयास ना करे, उसी तरीके से उसे चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की निंदा ना करे और नारकीय जीवन में जाने के लिए उनका शत्रु ना बने। इस श्लोक का प्रयोजन इस बात पर बल देना है कि भगवान के शत्रु का भी उद्धार हो सकता है, उनके मित्र के विषय में तो कुछ कहना ही नहीं। श्रील मध्वाचार्य ने भी कई प्रकार से कहा है कि मनुष्य को मनसा वाचा कर्मणा भगवान विष्णु की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि निंदक अपने पूर्वजों सहित नारकीय जीवन का भागी होगा। वो तो नरक में जाएगा, उसके पूर्वज जो पहले कहीं और इतर लोकों में हैं वह भी नरक में चले जाएंगे अगर वो भगवान की निंदा करता है, ऐसा मध्वाचार्य कह रहे हैं। कर्मणा मनसा वाचा युद्ध स्यात् विष्णु अभ्यम मंजन्ति पितरस्य तस्य नरके शाश्वती तमः। तो कह रहे हैं कर्मणा मनसा वाचा, कर्म मन और मानस वाणी से जो दुस्वात विष्णु अभ्यम भगवान विष्णु से जो क्या करता है द्वेष करता है, दुस्यात मंजन्ति पितरस्य तस्य नरके शाश्वती, शाश्वत रूप से उनको नरक में रहना पड़ता है। अर्थात भगवान की निंदा सारे शास्त्रों में क्या है, निषेध है। ये मतलब प्रमाण कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि निंदा कभी नहीं कर रहे हैं, नहीं तो भगवदगीता क्यों बोलते, भगवत गीता में ऐसा क्यों कहा जाता है कि निंदा नहीं करनी है, नहीं तो उसको असुर योनि में प्राप्त होना पड़ेगा, वो भी शाश्वत काल के लिए। मध्वाचार्य क्यों कहते, फिर भगवत गीता कह रही है 19वें और 20वें श्लोक में 16वें अध्याय के, तान अहम दुष्टः क्रूरान संसारेषु नराधमान छिपामि अजस्रम अशुभान असुरेषु एव योनिषु आश्रम योनिम आपन्न मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येव कौन्तेय ततो यान्ति अधमाम गतिम। तो अधमाम गतिम यान्ति, अधम गति को वो प्राप्त हो जाते हैं अगर वो आश्रय भाव से मुझे भजेंगे, आश्रय भाव से अगर मेरे साथ संबंध रहेंगे तो उनको निश्चित ही अधम योनि में अर्थात नरक लोकों में जाना पड़ेगा, ये इसका अर्थ हुआ। फिर भगवद गीता में अवजानन्ति माम मूढ़ा मानसिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूतेश्वरम। तो कह रहे हैं कि जो लोग अवजानन्ति, अवजानन्ति मतलब निंदन्ति, जो मेरी निंदा करते हैं, जानंती का भाव वैसे होता है जानना, लेकिन अब जब उसमें उपसर्ग आ जाएगा तो उसका अर्थ बदल जाता है, उसका भाव निंदा होता है। अब जानंती माम मूढ़ा, जो मूढ़ हैं वो मुझको क्या मानते हैं, तानुसिम मानुसिम तनुमाश्रता, कि मैंने मनुष्य शरीर धारण कर लिया है, परम भावम अजानंतो, वो भक्ति भाव के परम भाव को नहीं जानते हैं कि मैं मम भूत महेश्वरम, कि मैं सारे जीवों का महेश्वर हूं, इसलिए उनको क्या है, वो निंदा करते हैं मेरी। तो जिनको सही सिद्धांत नहीं मालूम वही केवल भगवान की निंदा करते हैं। तो हमें अपवाद को शास्त्र नहीं समझ लेना चाहिए, यानी अपवाद को नियम नहीं समझ लेना चाहिए कि शिशुपाल दंतवक्र ने निंदा की तो हम भी करेंगे, नहीं, क्योंकि शास्त्र सभी जगह निंदा को क्या कर रहे हैं, निषेध कर रहे हैं, तो हमारे लिए ये स्वीकारणीय नहीं है। फिर आगे कह रहे हैं, अगर कोई निंदा करता है तो क्या होता है, मोघ आशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेत सह राक्षसीम आसुरीम चैवा प्रकृतिम मोहिनी श्रुतः। तो कह रहे हैं जो शत्रु भाव से जो कुछ भी किया जाता है वह विफल हो जाता है, मोघ आशा, अर्थात अगर कोई व्यक्ति भगवान में ब्रह्मलीन होना चाहता है या मुक्ति प्राप्त करना चाहता है तो वो आशा भी विफल हो जाएगी। मोघ कर्माणो, अगर कोई कर्मकांड के माध्यम से कुछ फल सिद्धि चाहता है, सकाम भक्ति करना चाहता है, तो वो भी उसकी कर्मकांड की जो भावना है या क्रिया की जो भावना है वो भी क्षीण हो जाएगी, मोघ। और मोघ ज्ञाना, अगर कोई व्यक्ति ज्ञान अनुशीलन करना चाहता है, ज्ञानमय भक्ति करना चाहता है, तो उससे भी व्यक्ति क्या हो जाएगा, च्युत हो जाएगा, और उसकी जितनी भी आशा, जितने भी कर्म और जितने भी ज्ञान है उससे वो क्या हो जाएगा, च्युत हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। राक्षसीम आसुरीम चैवा प्रकृति मोहिनी श्रुतः, और जो राक्षसी भाव के लोग रहते हैं वही इस प्रकार से भगवत धाम को वापस जाने की आशा से निराशा को प्राप्त होते हैं। आखिरी, जहां तक हिरण्यकश्यपु की बात है, यद्यपि वह भगवान से अत्यधिक शत्रुता रखता था किंतु वह अपने पुत्र के विषय में सदैव सोचता रहता था, जो महान भक्त था, अतएव अपने पुत्र प्रहलाद महाराज की कृपा से हिरण्यकश्यपु को भगवान के द्वारा उद्धार हो गया। श्लोक यहां पे दे रहे हैं, हिरण्यकश्यपु चापि भगवत निंदया तमः विवक्षुर अत्यगात सुनो प्रहलादस्य अनुभावता। तो प्रहलाद की कृपा से यद्यपि वो निंदा करता रहता भगवान की कि मैं विष्णु को देख लूंगा, आने दो, मैं विष्णु को दंडित करूंगा, तो इस तरीके की बात कोई भगवान के प्रति बोल सकता है क्या, नहीं। लेकिन चूंकि प्रहलाद के प्रति उसकी क्या थी, प्रीति थी, विभुक्षु अत्यगात सुनो, सुनो मतलब अपने बच्चे के प्रति, बालक के प्रति, प्रहलादस अनुभावता, तो इस कारण से उसकी क्या हो गई। अब ये अलग एक विषय है कि अगर किसी का भगवान के भक्तों से कोई प्रेम होता है तो उसका किसी कारण से उद्धार हो जाए, बात अलग है। तो निष्कर्ष यह निकला कि मनुष्य को शुद्ध भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए, यहां तक कि निजी लाभ के लिए भी हिरण्यकश्यपु या शिशुमाल का अनुकरण नहीं करना चाहिए, सफलता प्राप्त करने का यह मार्ग नहीं है। तो यह निष्कर्ष में श्रील प्रभुपाद ने बड़ी अच्छी उक्ति लिखी कि ये हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, दंतवक्र, शिशुपाल, कुंभकर्ण और रावण, इनके द्वारा की जाने वाली अनन्य चिंतन जो शत्रु भाव में किया गया, यह हमारे लिए अनुकरणीय नहीं है, नहीं है, नहीं है। हरे कृष्णा। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा। किसी का कोई प्रश्न है तो कृपया पूछ सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की।